ओम शांति। अब हम सभी पावरऑफ साकाश परिवार की हजारों आत्माएं बाप दादा के साथ उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी छत्र छाया में अपने को सोलह कला संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। आज बाबा हमें 14 कला के बारे में बताएंगे और हम बच्चे भी चेक करेंगे कि ये कला हमारे में कितनी आई है और कितनी अभी लानी है पूरा संपूर्ण बनने के लिए। 14 कला है, या यूं कहें 14वीं कला है बिगड़ी को बनाने की, अर्थात व्यर्थ को समर्थ में बदलने की कला। अभी तक बाबा ने हम बच्चों को बताया कि हम बच्चों में पहली कला सर्व को मित्र बनाने की कला होनी चाहिए, दूसरी कला व्यवहार कला अथवा लोकरंजन कला होनी चाहिए, तीसरी कला परिवर्तन और परिवर्धन लाने की कला होनी चाहिए, चौथी कला मन को मुदित अवस्था में रखने की कला होनी चाहिए, पांचवी कला संगठन कला नेतृत्व कला और प्रशासन कला होनी चाहिए, छठी कला सीखने और सिखाने की कला होनी चाहिए, सातवीं कला कार्य करने और कार्य से निवृत्त होने की कला होनी चाहिए, आठवीं कला वक्तृत्व कला तथा पत्र लेखन कला हम बच्चों में होनी चाहिए, नौवीं कला विचार कला और निर्माण कला भी होनी चाहिए, दसवीं कला कल्याण कला और सेवा कला भी होनी चाहिए, ग्यारहवीं कला गुप्त करने तथा प्रत्यक्ष करने की कला होनी चाहिए, बारहवीं कला नेतृत्व कला होनी चाहिए और तेरहवीं कला पालना करने की कला भी होनी चाहिए। और आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि हमारे में बिगड़ी को बनाने की अर्थात व्यर्थ को समर्थ में बदलने की कला होनी चाहिए। मैं आत्मा एक बगीचे में एकांत में पेड़ के नीचे बैठी अपना खुद का निरीक्षण कर रही हूँ। मैं अपने से बातें करते हुए अपने से कहती हूँ कि पूरी तरह से व्यर्थ, पूर्णतः व्यर्थ कोई भी चीज नहीं होती। जिन चीजों का उपयोग करना हम नहीं जानते उन्हें हम व्यर्थ अथवा वेस्ट कह देते हैं। उन्हें हम वेस्ट समझ कर फेंक देते हैं। क्या मैं आत्मा व्यर्थ चीजों का समर्थ प्रयोग करना जानती हूँ? जरा सोचूं मैं आत्मा, जिन्हें मैं व्यर्थ समझकर, चाहे वो कागज हो, चाहे टूटी बोतलें हो, चाहे फटे पुराने कपड़े हो, उन्हें कबाड़ी वाले को दे देती हूँ। मैं मुझ आत्मा के लिए वह व्यर्थ है, लेकिन जिसे मैं वो देती हूँ उसके लिए वह समर्थ होता है। उन चीजों का वह नवीनीकरण करके उसे कच्चे माल के तौर से उनका प्रयोग करने के लिए कारखाने वालों को बेच देता है। और पैसे कमाता है। यानी कि जो मेरे लिए व्यर्थ था वह सच में व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जो चीज व्यर्थ होती है वो तो सबके लिए व्यर्थ होती है। लेकिन यहाँ जो मेरे लिए व्यर्थ था वह तो किसी और के लिए पूरी तरह से समर्थ था। तो क्या कोई भी चीज व्यर्थ होती है? पुरुषार्थी जीवन में कई अवसर ऐसे आते हैं जब ऐसा महसूस होता है कि लॉस हो गया, हानि हो गई। परंतु उस हानि को भी कई गुना लाभ में परिवर्तित करने की विधि अथवा इसकी युक्ति भी अपने प्रकार में एक कला है। क्या यह कला मुझे आती है? अगर मेरा योग अटूट होगा बाबा के साथ, तो ये कला मुझ में आपे ही आ जाएगी, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि ड्रामा कल्याणकारी है, इसके हर सीन में लाभ है, हानि है ही नहीं। हर सीन बच्चों के लिए समर्थ है, कुछ व्यर्थ है ही नहीं। तो बाबा के साथ हमारा अटूट संबंध हमें इस कला में संपूर्ण बनाने की मदद करता है। जैसे किसी के शरीर को कोई छोटा मोटा रोग लग गया, अब इस बात की संभावना है कि उसको यह संकल्प आए कि वो स्वास्थ्य जैसी अनमोल चीज को गंवा बैठा है और अब किसी काम के योग्य ही नहीं रहा है, और दवाइयों पर उसकी पिछली कमाई का पैसा भी लग रहा है। परंतु जो आत्मा इस कला को जानकर इसका पूरा जानकार होगा, वैसे व्यर्थ संकल्प ना करके सबको समर्थ बनाने का संकल्प करेगा। वो यह सोचेगा कि अब उसे ऐसा अवसर मिला है जब वो अधिक समय परमात्मा की संगति में स्थित हो सकता है, ज्ञान की गहराई में गोता लगा सकता है और सेवा की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कुछ अधिक योजनाएं बना सकता है और सोच विचार कर सकता है, मनसा सेवा कर सकता है। उससे जो लोग मिलने आएंगे उनको वो अपनी स्थिति व वाणी से आत्मिक स्वास्थ्य यानी स्पिरिचुअल हेल्थ की ओर आगे बढ़ा सकता है। तो व्यर्थ सोच को समर्थ में बदलने का कितना लाभ हुआ, बेकार चीज को उपयोग में लाने का कितना लाभ हुआ, क्योंकि बेकार व्यर्थ कुछ नहीं है, कमजोर मन की निशानी है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी किसी की कोई निंदा होती है तो उसके मन में यह संकल्प चल सकता है कि वह व्यक्ति उसका विरोधी है और उसने उसके प्रति अपनी दुश्मनी का भाव प्रकट करने के लिए ही ऐसा किया है। परंतु इस संकल्प की बजाय यदि वो ये ऐसा सोचे कि मैं स्वयं में ऐसा परिवर्तन लाऊंगा कि निंदक भी प्रशंसक बन जाए और मैं स्वयं भी लोक पसंद तथा प्रभु पसंद बन जाऊं, तब वह इस कला का जानकार कहलाएगा। व्यर्थ को समर्थ में बदल दिया। किसी को आर्थिक हानि हो गई, उसके कारण उसकी कमाई ही रुक गई, तब संभव है कि उसकी खुशी कम हो जाए, उमंग उत्साह खत्म हो जाए, उसको लगने लगे कि उसका भाग्य अब खराब हो चुका है, उसका पुरुषार्थ भी ढीला पड़ सकता है। लेकिन जिसे हानि को लाभ में बदलने की कला आती होगी वो तो स्वयं भगवान में अटूट आस्था रखकर और ये सोचकर कि अब उसे विनाशी कमाई की बजाय अविनाशी कमाई करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, वो अधिक योगाभ्यास करके अनमोल आध्यात्मिक अनुभवों से मालामाल हो जाएगा। वो ये सोच सकता है कि विनाशी धन तो वैसे भी अब निकट भविष्य में खत्म होने वाला है, इसलिए उसे अविनाशी कमाई करने की अब जरूरत है। ऐसा सोचने से खुशी भी मिलेगी, उदासी भी खत्म होगी और वापस वह अपने लौकिक कार्य में भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि एक उमंग उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति, भरी हुई आत्मा ही आगे एक नए जीवन की शुरुआत कर सकती है। वास्तव में यह कला ऐसी कला है जो व्यक्ति को कई विषम परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि प्रतिदिन काम में आती है। प्रतिदिन ही मनुष्य के जीवन में ऐसे बहुत क्षण आते हैं जब उसे किसी न किसी प्रकार की क्षति होती दिखती है। यदि हर रोज हम अपनी परिस्थितियों को बदलकर जीवन में मोड़ लेके आते हैं और इन परिस्थितियों को सुख का साधन बना लेते हैं, तो हम इस पुरुषार्थी जीवन में बहुत आगे निकल सकते हैं। अतः संपूर्णता के लिए इस कला का अभ्यास अति आवश्यक है। सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। कोई चीज बेकार नहीं होती, कोई परिस्थिति बेकार नहीं होती, क्योंकि ईश्वर परमात्मा बिगड़ी को संवारने वाला हमें मिल चुका है। तो बिगड़ी को संवारने वाला, बिगड़ी को बनाने की कला सिखाने वाला हमें यह कला सिखाने आया है। हमें चौदहवीं कला, बिगड़ी को बनाने की अर्थात व्यर्थ को समर्थ में बदलने की कला में संपूर्ण होना ही है। शुक्रिया बाबा इस मीठे मीठे ज्ञान के लिए। ओम शांति।